वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर दौरान खुतबा कुरान की कोई आयत भी पढ़ दी है, कोई भी नसीहत की दीनी बात कर दी है अरबी जबान में, तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। असल में चूंकि इस पर इज्तिहादी तौर पर मौजूदा ज़माने में अरबी के अलावा खुतबा होने लगा है, तो हम उस पर लौटाने को तो नहीं कहते लोगों को खुतबा जय नमाज यानी, लेकिन यह है कि ऐसा खुतबा जो है अरबी ही में होना चाहिए। दोनों अपना टॉक उर्दू में कर लीजिए, जिस ज़बान या इंग्लिश में कर लीजिए, तो उसके बाद जब खुतबे का वक्त आए तो उसके लिए मुख्तसर 2-3 लाइन का खाली खुतबा, जितना ये आपने लिखा है ना बस इतना, इसको ऊपर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वशद मुहम्मद अब्दुल रसूल, इतना भी खाली आपने पढ़ लिया तो काफ़ी है। मतलब एक आयत भी काफ़ी है, तकवा की एक आयत पढ़ दीजिए कुरान से, हम की एक आयत पढ़ दी तब भी काफ़ी हो जाएगी। बल्कि खाली दोनों खुतबों में अल्लाह अकबर कह के बैठ जाइए तब भी हो जाएगा अरबी में खुतबा। तो खुतबा तो इतना मुख्तसर हो सकता है, तो वो एक जो जिसे कहना चाहिए रिचुअल है या रैलिक है, एक जो नहीं रैलिक तो नहीं कहना चाहिए, वो एक दीनी एक वो है फॉर्म है, तो उसको उसी में रखना चाहिए। उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट तो ये है, लेकिन अच्छा ये है कि उसको 4 लोग कम से कम हो, इमाम के अलावा 3 लोग हों, और उसमें बाकायदा जो है वो हमसे और दुरूद सलाम से और फिर तकवा की बात दिखाई सिखाई जाए दोनों में, और फिर कुछ दुआ कर ली जाए। तो ये एक सारी कुछ चीज़ें जिससे वो ज़्यादा अच्छा और मसनून बन जाता है। लोगों ने लिखे हुए हैं उनको लीजिए और पढ़िए। तो अगर जहाँ जहाँ आपका इन्फ्लुएंस हो और आप कोशिश कर सकते हो तो इख्तिलाफ से बचना चाहिए। इत्तेफाक इसमें है कि जो सब जानते हैं कि अगर अरबी में खुतबा हो तो किसी को इतराज़ नहीं है, नहीं नमाज हो जाएगी। कोई ये तो नहीं कहता ना कि अरबी में खुतबे से नमाज नहीं होती। इख्तिलाफ ये है कि क्या उर्दू के अलावा यानी अरबी के अलावा किसी और ज़बान में, इंग्लिश में शुरू अरबी में करके इंग्लिश में चले गए या किसी और ज़बान में उर्दू में चले गए तो नमाज होगी कि नहीं। तो जवाब मुख्तसर तो यह है कि कुछ अइमा के नज़दीक हो जाती है, कुछ के नज़दीक नहीं होती। इमाम हनीफा के यहाँ यानी हनफी फ़िक में खुतबा इस तरह अदा नहीं होता। खुतबे के लिए उनके यहाँ शर्त है कि अरबी ज़बान में ही हो, और उसकी सबसे मोटी दलील तो यही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मक्का और मदीना में रहे, फिर यहाँ से बाहर निकले और फैले आलम इस्लाम में, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में बल्कि फैले। तो ईरान गए तो वहाँ तो लोग ईरानी बोलते थे, उसको फतह करने के बाद लोगों ने वहाँ ईरानी में बयान करना शुरू नहीं किया, अरबी में जुमा रखा। फिर वो उसके बाद और फैले, मिस्र भी पहुँचे तो वहाँ पर लोग कोप्टिक कप्ती थे, कप्ती ज़बान अपनी चलाते थे, वहाँ पर भी अरबी बोली। दुनिया के जिस जिस खत्े में जाते गए वहाँ अरबी ही को उन्होंने पढ़ना पढ़ाना सिखाया। इस वक्त हमारे पास दीन के अंदर 2 चीज़ें, कुरान रह गया है और एक नमाज रह गई है। नमाज और खुतबा उसी का हिस्सा है जारी बात, जिसमें हमारी अरबी मौजूद है। अब ये बात आजकल शुरू हो गई है, कुछ लोगों ने ये भी तस्करा करना शुरू किया है कि नमाज भी अगर उर्दू में ही यानी अंग्रेज़ी ही में या किसी भी ज़बान में अपनी ज़बान में हो जाए तो कैसा मज़ायका इसमें। ये सारी चीज़ें देखने में बड़ी आसान और भली लगती हैं कि इससे हमें समझ में आएगा कि क्या कहा जा रहा है, इससे हमें थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा उसका, लेकिन ये सारी चीज़ें दीन को फ्यूचर में बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली हैं। इसलिए कि एक दफ़ा उम्मत अरबी ज़बान से हट गई, जैसा कि हटी ही हुई है किसी दर्जे में, कुरान तो समझ में आते ही नहीं, वैसे भी अरबी तो समझ में आती नहीं, लेकिन कम से कम वो वर्ड्स प्रिजर्व हैं, जो पढ़ना चाहे कम से कम उसको ये पता होगा। यानी आपके पीछे अगर कोई नमाज पढ़ रहा हो और आप इमाम हो और आप अरबी के ऐसे अल्फाज सूरह फातिहा की जगह कुछ और पढ़ दें, लोग अरबी तो नहीं जानते लेकिन सूरह फातिहा आप गलत पढ़ के दिखाइए, बच्चा भी आपको गलत बताएगा कि आप गलत पढ़ रहे हैं। इसीलिए कम से कम ये जो बेस है वो ख़त्म ना हो। एक दफ़ा लोग अरबी से या कुरान के उसलूब से दूर हो गए और नमाज में भी ये चीज़ ख़त्म हो गई तो बस फिर उसके बाद बहुत ही ख़राबी का वक्त होगा। इसलिए कि जिस तरह तहरीफ पिछले मज़ाहिब में हुई है वही तहरीफ दीन में भी होने लगी, क्योंकि तर्जुमा तो आप अपने हिसाब से करेंगे ना, मैं अपने हिसाब से करूँगा, हर आदमी अपने अपने हिसाब से तर्जुमा करेगा। अभी कुरान के होते हुए इतने इख्तलाफात और मसाइल रहते हैं, लोग उसी में से देख देख के फितने निकालते हैं। जब कुरान नहीं होगा, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, यानी इस तौर पर नहीं होगा कि हमारी ज़िंदगी में हम उसको पढ़ते भी ना हो, हमारी नमाज भी उर्दू अंग्रेज़ी में होने लगी हो, तो उसके बाद आप क्या समझते हैं कि लोग घर जाके उसके बाद कुरान पढ़ा करेंगे? कोई नहीं पढ़ेगा, जब आपने ये इजाज़त दे दी तो ख़त्म, छुट्टी। तो ये बहुत बड़ा फितना है कि अरबी ज़बान के ख़िलाफ़ वो एक गोया एक साजिश, और ये दीन के ख़िलाफ़ साजिश है। तो इसलिए हम इसको बिल्कुल जो कर रहे हैं वो इस नियत से नहीं कर रहे हैं, उनके दिलों में उनको तो पता भी नहीं है, वो तो बेचारे आसानी समझ के इस बहाने लोगों तक तो दीन की कोई बात पहुंच जाए। हम ये कहते हैं ये दो खुतबे, एक राय ये है कि दो खुतबे जो है, दो रकत जो जुहर की चार फर्ज होती थी उसकी जगह दो खुतबे और दो रकत पढ़ी जाती है, तो ये उसके कायम मुकाम है। वरना ये कैसे हो सकता है कि खुतबे के दौरान, अगर खुतबा खुतबा ही है और वो जरीबत नमाज का हिस्सा नहीं है, खाली वाज है, उसमें किसी को आप देख रहे हैं कि वो गलती कर रहा है, बात कर रहा है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो गलती कर रहा है नमाज में, और आप उसको खुतबे के दौरान आप उसको रोकेंगे तब भी आपने गलती की। वक़द लगा के अल्फाज है कि तूने गलती की, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करना तो दीन का अहम शोभा है, तो अपने हाथ से किसी को देखो बुराई करते हुए तो रोको जबान से, वरना रोको वरना दिल में बुरा जानो, हदीस आप सब जानते हैं। और वो आप फरमा रहे हैं कि मस्जिद में होते हुए, अल्लाह के घर में रहते हुए कोई गलती कर भी रहा हो, गुनाह कर भी रहा हो, तो मस्जिद में उसको भी उससे न रोको, वो फर्ज काम न करो रोकने वाला, इसलिए कि तुम इस वक्त नमाज में न सही लेकिन ऐसी स्टेट में हो कि जिस स्टेट में तुम्हें न बातें करनी है न खाना है, बस तुम्हें ये रिलैक्सेशन दे दी गई ताकि बात सुनने में तुम्हारी तवज्जो रहे कि सही से बैठ के अदब से सुनते रहो। यहाँ तक कि हदीस में है तशबीक से आपने मना फरमाया, तशबीक का मतलब ये कि आदमी ऐसे बैठ जाए कि अपने यानी पांव दोनों ऊपर आगे को सीने की तरफ उठा के कूल्हे पे बैठा हो और अपने हाथों से उंगली को दूसरी उंगलियों में डाल के पांव के गिर्द घेरा बना के हल्का सा ऐसे लेटे, या किसी कपड़े से बांध ले, मुख्तलिफ उसकी ताबीरात है तशबीक का। बैठने के इस स्टाइल को अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया कि तशबीक न करो नमाज में या खुतबे के दौरान, क्यों? क्योंकि ऐसा करेगा जो भी, तो उससे उंगने का खतरा है, नींद का खतरा है, जरा लूज हो गया है, ईजी बैठा हुआ है, रिलैक्स होकर बैठा हुआ है, इसीलिए दौरान खुतबा बहुत अदब और तरीके से बैठने का हुक्म है। खैर, कहने का मतलब यह है कि खुतबा एक बहुत अहम चीज़ है, उसको अगर हम अपनी बेसिक कुछ चीज़ों को बचा के नहीं रखेंगे, जहाँ हमारा रोल हो भी सकता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम अल्टीमेटली इन चीज़ों को भूल जाए, हमारी अगली जनरेशन, हमको भी तो कुरान पढ़ना, दुआएं याद नहीं होती, बुनियादी बातें समझ में नहीं आती, उनकी औलाद का क्या होगा? आपने तो सीखा हुआ है, तो आप अपने पाकिस्तान का सारा वो सीखा सिखाया या इंडिया से जहाँ से भी सीख कर लाए हैं उसका आप फायदा उठा रहे हैं, इसलिए आपको नजर नहीं आता कि बाद में क्या होगा। आपकी औलाद को आप खुद सिखा रहे हैं, आपको अंदाजा है कितना मुश्किल है, लेकिन चलो किसी दर्जे में सिखा लेते हैं आप, इसलिए कि आपको पता है, वो अपनी औलाद को कैसे सिखाएंगे और उसके बाद वाली जनरेशन का क्या होगा? तो जरा इस पर तवज्जो देने की बहुत जरूरत है, अल्लाह में समझ अता फरमाए। बहरहाल आपके सवाल का जवाब तो रह गया, वो बस इतना ही है कि आपको लौटाने की इंशाल्लाह जरूरत नहीं, एज लॉन्ग एज के आपने दोनों खुतबों के दौरान एक एक कोई आयत या कोई दिन की कोई बात अरबी में पढ़ दी थी इंशाल्लाह ताला।